28 मई दिन मंगलवार दिन भर मैं हूं रेहान फदर। कांग्रेस में हार के बाद मंथन, लेकिन पार्टी ने राहुल गांधी के इस्तीफे की खबरों को किया खारिज।
जो CWC की रेजोल्यूशन है वो स्टैंड करती है, वो है। आपको जब ये जानकारी दी गई कि कांग्रेस कार्य समिति ने वो इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया, नामंजूर कर दिया, उसके बाद की जो भी प्रश्न उत्तर होंगे वो स्पेकुलेटिव होगा।
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कमलनाथ सरकार के भविष्य पर सवाल।
तो ये अनसर्टेनिटी बन गई है। कमलनाथ को एक एडवांटेज ये हुआ चुनाव परिणाम से कि जो प्रेशर ग्रुप थे विद इन कांग्रेस, दिग्विजय सिंह, सिंधिया, अजय सिंह, अरुण यादव, ये सब चुनाव हार गए।
चर्चा होगी पश्चिम बंगाल और झारखंड की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, कमलेश मठेनी से। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के दो और CPIM के एक विधायक BJP में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही 60 पार्षदों ने भी BJP की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आज भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों में बीजापुर के विधायक सुभ्रांशु रॉय, नवापारा के विधायक सुनील सिंह और बैरकपुर के विधायक शील भद्र दत्ता शामिल हैं। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वैन डर बेलेन ने देश में अंतरिम सरकार की नियुक्ति की है। सोमवार को ऑस्ट्रियाई चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज अविश्वास प्रस्ताव में हार गए थे, जिसके चलते मौजूदा सरकार गिर गई। कुर्ज के पूर्व सहयोगी और फ्रीडम पार्टी के एक नेता का वीडियो लीक हो गया था, जिसमें वो एक रूसी महिला के साथ दिख रहे थे। इस वीडियो के लीक होने के बाद काफी हंगामा हुआ, जिसके चलते कुर्ज ने फ्रीडम पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था। एक प्रेस वार्ता में राष्ट्रपति बेलेन ने सरकार को उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त करने की घोषणा की।
Heute werde ich die Bundesregierung von ihrem Amt entheben und gleichzeitig mit der interimistischen
आज मैं मौजूदा सरकार को उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त करने की घोषणा करता हूं। इसके साथ ही मैं अंतरिम सरकार के नियुक्ति की घोषणा भी कर रहा हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि लीक हुए वीडियो की वजह से हमारे देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी नुकसान उठाना पड़ा है। हमें इसकी चिंता करने की जरूरत है। ये थे ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वैन डर बेलेन के शब्द। नेपाल प्रशासन ने बताया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे एक अमरीकी पर्वतारोही की मौत हो गई है। इस सीजन में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले वह 11वें शख्स हैं जिनकी मौत हुई है। क्रिस्टोफर कोलिश चोटी तक पहुंच चुके थे, लेकिन वहां अचानक उनकी जान चली गई। इस सीजन में एवरेस्ट पर बहुत ज्यादा लोगों के पहुंच जाने को लोगों की मौत की वजह बताया जा रहा है। जर्मनी के एक पर्वतारोही डेविड गोटलर ने इस संबंध में कहा है कि एवरेस्ट पर चढ़ते समय सुरक्षा मापदंडों के साथ कोताही नहीं बरती जा सकती।
There was always so many people on these summit days. And then they get stuck in a queue. And then if they have like a bad risk management.
इस सीजन में हमेशा ही वहाँ इतने लोग पहुँचते हैं। ये लोग लंबी कतारों में फंसे रहते हैं। अगर उन्हें नीचे उतरने के लिए कोई बेहतर व्यवस्था ना मिले तो वे अक्सर सस्ती सेवाओं को भी अपनाने लगते हैं। यही वजह है कि एवरेस्ट पर इतनी मौतें हो रही हैं। अगर आप भरोसेमंद एजेंसी के साथ चढ़ाई करेंगे तो इस तरह की परेशानियाँ नहीं आएंगी। ये थे जर्मनी के एक पर्वतारोही के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ह्यूमन राइट्स वॉच समूह ने मिस्र की सेना पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने सिनाई प्रायद्वीप में रहने वाले आम नागरिकों को प्रताड़ित किया है। इस इलाके में इस्लामिक स्टेट समूह का वर्चस्व रह चुका है। सेना इस समूह को खदेड़ने के मकसद से यहां अभियान चला रही है, लेकिन इस मानवाधिकार समूह की माने तो सेना ने इस इलाके में आम लोगों के अधिकारों का हनन किया, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे गए या घायल हो गए। सूडान में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने आज से 2 दिन की हड़ताल शुरू की। प्रदर्शनकारियों की सेना से मांग है कि वो जल्द से जल्द नागरिक प्रशासन के हाथ में सत्ता सौंप दें। इस प्रदर्शन की वजह से राजधानी खार्तूम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बस अड्डों पर कई यात्री फंस गए हैं। परिवहन व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल हैं। मलेशिया का कहना है कि वह अलग अलग देशों से आने वाले कई टन प्लास्टिक कचरे को वापस उन्हीं देशों के पास भेज रहा है। मलेशिया ने कहा है कि वह दुनिया भर के लिए कूड़ेदान नहीं बनना चाहता है। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे की खबरों को अटकल बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस कार्य समिति पहले ही राहुल गांधी के इस्तीफे को नामंजूर कर चुकी है। हालांकि पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता हार और उसके बाद पार्टी में हो रहे मंथन पर रिकॉर्ड पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो बदलाव के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी कांग्रेस को बदलाव की सलाह दे रहे हैं। वात्सल्य राय की रिपोर्ट।
कांग्रेस पार्टी की आज शाम हुई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजेंडे के इतर जो सवाल सबसे अहम था वो पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपने जवाब से इस प्रश्न के धरातल पर ही सवाल उठा दिया।
जो स्पेकुलेशन है मैं उस पर तो क्या जवाब दूंगा। आपको जब ये जानकारी दी गई कि कांग्रेस कार्य समिति ने वो इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया, नामंजूर कर दिया, उसके बाद की जो भी प्रश्न उत्तर होंगे वो स्पेकुलेटिव होगा।
खेड़ा ने भले ही इस्तीफे के सवाल को अटकल बता दिया लेकिन उनके पहले पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता रिकॉर्ड पर कुछ भी कहने से बचते रहे। किसी का फोन बंद था तो किसी ने सहयोगियों से मीटिंग में व्यस्त होने की बात कहला दी, लेकिन कांग्रेस के जो नेता मीडिया से बात कर रहे हैं वो पार्टी को आत्मचिंतन की सलाह दे रहे हैं। बीते साल कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए तारिक अनवर का आकलन है कि कांग्रेस का संगठन चरमरा गया है।
संगठन की कमजोरी थोड़ी थी और संगठन का जो रोल होता है ऐसे मौके पर वो नहीं हो पाया। कि प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, न्याय का जो प्रोग्राम लाया था राहुल गांधी जी ने तो वो एक आम आदमी को छू रहा था, लेकिन वो उस मैसेज को हम वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए।
राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि संगठन की कमजोरी ने चुनाव में कांग्रेस की हार में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच तुलना करते हुए कहते हैं कि अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद मिलती है। पार्टी के संगठन में भी अमित शाह नरेंद्र मोदी के पूरक हैं। आम चुनाव में दोनों ने साथ मिलकर काम किया। ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस में एक आदमी सब काम कैसे कर सकता है।
अगर आप इसको रेट्रोस्पेक्टिवली देखें क्या हुआ, पीछे मुड़ के देखें तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी वो जनरल थे जिसके पास फुट सोल्जर्स नहीं थे। बिना सोल्जर्स के कोई जनरल जीतता है क्या? नहीं जीतता।
उधर तारिक अनवर साफ तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस को बेहतर स्थिति में आना है तो वास्तविक बदलाव करने होंगे।
अगर सिर्फ हम कुछ इस तरह के फैसले लेंगे जिसको आप कह सकते हैं कॉस्मेटिक, तो कॉस्मेटिक के फैसला लेने से उसकी स्थिति नहीं बदलेगी। इसको बिल्कुल यूं कहा जाए कि जड़ से ऊपर तक उसको बदलने की आवश्यकता है।
लेकिन तारिक अनवर राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के पक्ष में नहीं है। वो कहते हैं कि पार्टी के पास उनका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि अगर राहुल गांधी पार्टी की कमान छोड़ते हैं तो इससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई।
ये क्या मतलब है कि देश का इतना बड़ा 125 करोड़ लोग हो उसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एक परिवारवाद की कलाप थक गए हैं और उन्हें लगता है कि अगर विपक्ष को अपनी जगह बनानी है तो कोई गैर नेहरू गांधी परिवार का सदस्य सामने आए। और ये चीज जो है, ये बात राहुल गांधी को मुझे लगता है कि अब उनको समझ में आ गई है। मुझे लगता है इसको कांग्रेस में इतनी उछल पुछल नहीं मचानी चाहिए क्योंकि नेहरू गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अलग नहीं कर रहा है।
विनोद शर्मा भी मानते हैं कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस को दोबारा मुकाबले में लाना चाहते हैं तो उन्हें खुद को बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार करना होगा।
आज के दिन मैं समझता हूँ राहुल गांधी को जो रोज की ड्यूटीज होती है पार्टी चलाने की, उससे अपने आप को सेवानिवृत्ति लेकर वो पार्टी को जमीन पे मजबूत करने के लिए निकले। पॉलिटिक्स में पद से पावर नहीं आती, पावर आती है हैसियत से, और वो हैसियत है रहेगी इस कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की। जैसे कि बीजेपी में जब बंगालू लक्ष्मण पार्टी के अध्यक्ष थे फिर भी पार्टी की कमान अटल जी और आडवाणी जी के पास रहती थी।
विनोद शर्मा ये भी कहते हैं कि राजनीतिक दलों और राजनेताओं को खारिज करने का जोखिम नहीं लिया जाना चाहिए। वो याद दिलाते हैं कि 1984 में दो सांसदों की पार्टी बीजेपी की तकदीर कैसे बदल गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आज की कांग्रेस और उसका नेतृत्व हार के भंवर से निकलने का फॉर्मूला खोजने को तैयार है। कांग्रेस का भविष्य इस सवाल के जवाब से ही तय होगा। वात्सल्य राय, बीबीसी दिल्ली।
लोकसभा चुनाव में कई सीटों का नुकसान होने के बाद टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दो और सीपीएम के एक विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा करीब 50 पार्षदों ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हमारे साथी नवीन नेगी ने कोलकाता फोन कर प्रभाकर मणि त्रिपाठी से संपर्क किया।
आज जैसा कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, भाजपा नेता मुकुल राय के पुत्र शुभ्रांशु राय थे तृणमूल कांग्रेस के एमएलए, तो उनको लोकसभा चुनाव के नतीजों के अगले दिन ही 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया था पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में। तो उसी समय से कयास लग रहे थे कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और उन्होंने अपने पिता की सराहना भी की थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे पिता ने अकेले टीएमसी को बर्बाद कर दिया। उनके साथ बिष्णुपुर के बांकुड़ा जिले में टीएमसी विधायक हैं तुषार कांटी भट्टाचार्य, और सीपीएम के उत्तर 24 परगना जिले में हेमताबाद के विधायक हैं देवेंद्र नाथ राय। ये तीनों लोग मुकुल राय के जरिए आज बीजेपी में शामिल हो गए, और यही नहीं जिले में 4 नगर पालिकाओं पर भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया। लगभग 60 पार्षद आज बीजेपी में शामिल हो गए, और इस जिले की 4 नगर पालिकाएं तृणमूल के कब्जे से अब बीजेपी के कब्जे में चली गई।
बंगाल में जो विधानसभा है वहां पर क्या स्थिति है, कितने कितने विधायक किसके पास हैं इस वक्त?
अभी भी तृणमूल को कोई खतरा नहीं है। तृणमूल के पास 216 विधायक बचे हैं, अभी भी 218 थे और 2 के जाने के बाद 216 बचे हैं, तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। 294 सीटों में इतने ज्यादा उनके पास विधायक हैं, लेकिन खतरा यह हो सकता है कि अगले साल कोलकाता नगर निगम के चुनाव होने हैं और उनको मिनी विधानसभा कहा जाता है। तो अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें 53 वार्डों में 144 वार्ड हैं, 53 में बीजेपी तृणमूल से आगे रही है, और इवन जो ममता बनर्जी का अपना वार्ड है जहां वो रहती हैं वहां भी बीजेपी तृणमूल से आगे रही है। तो ये एक खतरा है अगले साल कोलकाता नगर निगम चुनाव। और जैसा कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि हमने T20 मैच शुरू कर दिया है और कम ओवरों में हमें ज्यादा रन बनाना है, और हमारा लक्ष्य अगले साल नगर निगम पर कब्जा करना है।
ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, अब लोकसभा चुनाव में भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं हो पाया, बंगाल में बीजेपी ने फिर भी अच्छी सीटें पाने में कामयाबी पाई, अब ममता बनर्जी क्या मुद्दे उठा पाएंगी, कितनी बड़ी चुनौती अब इन दो विधायकों का बाहर चले जाना, 50 पार्षदों का बाहर चले जाना है?
हाँ, ममता के लिए चुनौती तो लगातार कड़ी हो रही है, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कड़ी हो रही है। हालांकि ममता ने बार बार कहा है कि यह चुनाव विकास के मुद्दे पे नहीं लड़ा गया था, यह धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण था और सांप्रदायिक आधार पर लड़ा गया। उन्होंने कहा अभी हमें नई रणनीति बनानी होगी, पार्टी से कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो बीजेपी से पैसे लेकर और उसकी मदद करते हैं, उनकी शिनाख्त की गई है और उनको निकालना होगा। तो ममता ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और 31 मई को उनकी समीक्षा बैठक है फाइनल, उसमें वे अपने प्रस्ताव पेश करेंगी और उस दिन कुछ नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा संकेत उन्होंने दिया था शनिवार की बैठक के बाद।
प्रभाकर मणि तिवारी से बात कर रहे थे नवीन नेगी। मौजूदा लोकसभा में बीजेपी के बम्पर बहुमत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी राज्यसभा में कब तक बहुमत हासिल कर लेगी, और जब दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी बहुमत में होगी तो कौन कौन से मुद्दों पर काम कर पाएगी। प्रदीप कुमार की रिपोर्ट सुनिए संदीप सोनी से।
नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को 17वीं लोकसभा में बम्पर जीत मिली है। बीजेपी के 303 सांसद चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं, जबकि एनडीए के साथ मिलकर ये आंकड़ा 350 के पार तक पहुंचा है। इतने विशाल बहुमत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को कई मुद्दों पर निर्णायक फैसलों के लिए राज्यसभा में बहुमत का इंतजार करना होगा। राजनीतिक पत्रकार अजय सिंह का मानना है,
देखिए लोकसभा में बहुमत से राज्यसभा के बहुमत का कोई लेना देना होता नहीं है, सिवाय इसके कि एक साइकोलॉजिकल असर पड़ता है।
इस मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ साथ मौजूदा सदन में ऐसे दल भी हैं जो राज्यसभा में बीजेपी का साथ दे सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं,
2020 के नवम्बर तक में उसको पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, और इस समय उसकी 100-102 जो सीटें हैं उसके ऊपर उसे पूरे समय बीजू जनता दल और वाइस राजशेखर रेड्डी की जो पार्टी है और जो तेलंगाना राष्ट्रवादी पार्टी है उनका समर्थन दरकार होगा।
मौजूदा समय में बीजेपी के राज्यसभा में 73 सांसद हैं, एनडीए और मनोनीत सदस्यों को मिलाकर कुल 102 सदस्य बीजेपी के समर्थन में हैं। जरूरत पड़ने पर बीजू जनता दल के 9, वाईएसआर कांग्रेस के 2 और तेलंगाना राष्ट्र समिति के 6 राज्यसभा सांसद सरकार का समर्थन समर्थन कर सकते हैं। हालांकि राज्यसभा में बहुमत जुटाने के लिए अभी भी बीजेपी को 21 सांसदों की जरूरत है। अप्रैल 2020 तक राज्यसभा की कुल 55 सीटें खाली हो रही हैं और मौजूदा समीकरणों के मुताबिक कम से कम 19 सीटें एनडीए को मिलना तय है। इसके अलावा राज्यों में उठापटक पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। अजय सिंह कहते हैं,
अगर असेंबली में स्टेट इलेक्शंस में इनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और मान लीजिए मध्य प्रदेश या कर्नाटक यहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी होती है, तो उस केस में 2020 में शायद ये संभव हो कि एनडीए अपने दम पे राज्यसभा में मेजॉरिटी ले आएगी।
दरअसल बीते 5 साल के दौरान ऐसा कई बार देखने को मिला जब राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से बीजेपी सरकार को कई कानून पास कराने में खासी दिक्कत हुई। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं,
कुछ बिल है जो बहुत पेचीदा है जिसमें विपक्ष से उन्हें भाजपा को कोई समर्थन की उम्मीद नहीं है, जैसे ट्रिपल तलाक का बिल है, आधार का बिल है और सिटीजनशिप का बिल है। तो ये तमाम चीजें हैं जो विपक्ष उस पर समर्थन नहीं कर रही है।
इन विधेयकों के साथ साथ धारा 370 और राम मंदिर के मुद्दे भी हैं जो विवादास्पद होने के साथ साथ बीजेपी के घोषित एजेंडे में भी शामिल रहे हैं। रशीद किदवई मानते हैं कि बीजेपी अपनी विचारधारा पर ही काम करेगी।
भाजपा की जो पहले की राजनीतिक सोच थी कि देश में जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इससे थोड़ा हट के जैसे अमेरिकन सिस्टम पे एक राष्ट्रपति के हिसाब से जो है देश का जो पॉलिटिकल हेड है वो बनाया जाए या किसी दूसरे किस्म की व्यवस्था की जाए, उन तमाम चीजों के लिए 2022 बहुत महत्वपूर्ण है और वहाँ राज्यसभा में भाजपा का पर्याप्त बहुमत होगा तो संविधान में किसी भी तरीके का बदलाव करने में आसानी होगी।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार संविधान में संशोधन तक के स्तर पर जाएगी? इस पर अजय सिंह कहते हैं,
संशोधन तो 2/3 से होता है, तो 2/3 वाली स्थिति तो नहीं है आज भी। और दूसरा कंटेंशियस इश्यूज हैं जैसे कि आर्टिकल 370 और राम जन्मभूमि, तो ये सब इश्यूज हाउस में तो होते नहीं है, ये तो थोड़ा सा मुश्किल है कि हाउस में आप डाल दें और उसके बाद राज्यसभा में ना हो। तो हमें नहीं लगता है कि इमीडिएट इसमें कुछ होने जा रहा है और इमीडिएट इसमें हाउस से कुछ होगा। पर एक बात तो मान के चलना चाहिए कि बीजेपी का घोषित तौर पे एजेंडा है ना, अगर बीजेपी इस स्थिति में है कि वो ये सब उससे हो सकता है और वो सरकार में है तो बिल्कुल करेगी, इसमें कहाँ शक है।
जब लोकसभा में बहुमत के बाद राज्यसभा में भी बीजेपी को बहुमत मिलेगा तो बीजेपी कामकाज के साथ साथ अपनी विचारधारा को भी तेजी से आगे बढ़ाने की स्थिति में होगी।
प्रदीप कुमार की रिपोर्ट सुना रहे थे संदीप सोनी, ये बीबीसी है। आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब कमलनाथ सरकार के भविष्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कमलनाथ सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलियों की मदद से सरकार बना ली गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले अभूतपूर्व बहुमत के बाद अब विपक्षी भाजपा के साथ ही सरकार को समर्थन दे रहे विधायक भी दबाव बना रहे हैं। भोपाल से शुरेनिया जी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हुई थी। 230 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में कांग्रेस के पास 114 और भाजपा के पास 109 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के 1, बहुजन समाज पार्टी के 2 और 4 निर्दलीय उम्मीदवारों की मदद से कांग्रेस ने 121 सदस्यों का समर्थन हासिल कर लिया, जिसके बाद कमलनाथ ने प्रदेश में सत्ता संभाल ली। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पार्टी एकमात्र सीट छिंदवाड़ा ही जीत पाई। बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए हैं। इस बात पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस पार्टी ने 6 महीने पहले सरकार बनाई है उसकी स्थिति इस तरह कैसे हो गई। वहीं पार्टी को समर्थन दे रहे निर्दलीय और दूसरी पार्टी के सदस्यों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है ताकि उन्हें भी मंत्री पद हासिल हो सके। भाजपा के नेता भी लगातार अपने बयानों से प्रदेश के राजनीतिक माहौल को और गर्मा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति को करीब से देखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों की राय कमलनाथ सरकार को लेकर अलग अलग है। गिरजा शंकर कहते हैं कि यह बताना मुश्किल है कि सरकार बचेगी कि नहीं, लेकिन इस वक्त प्रदेश में एक तरह की अनिश्चितता बन गई है।
एक अनिश्चितता जो है वो बन गई है, तो ये अनसर्टेनिटी बन गई है। कमलनाथ को एक एडवांटेज ये हुआ चुनाव परिणाम से, कि जो प्रेशर ग्रुप थे विद इन कांग्रेस, दिग्विजय सिंह सिंधिया, अजय सिंह, अरुण यादव, ये सब चुनाव हार गए, तो एक तरफ तो उसको एडवांटेज हुआ कि वो इंटरनल दबाव से मुक्त हो गया, लेकिन दूसरी तरफ जो है दूसरा इंटरनल दबाव पैदा हो गया विधायकों का सरकार के गिरने नहीं गिरने को लेकर, अब वो दबाव में आ गए, तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है।
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार मुखर रहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस अपने कर्मों की वजह से खुद ब खुद गिर जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई कहते हैं कि अगर सरकार का तख्ता पलटने की बात ना भी हो तो भी विधानसभा का मानसून सत्र आने वाला है, इसमें किसी भी मनी बिल पर सरकार गिर सकती है। वो कहते हैं कि अब पूरा दारोमदार नरेंद्र मोदी पर है।
अब ये तो मोदी जी के ऊपर निर्भर करता है भाजपा के वजह कि वो यहाँ तख्ता पलट करें कि ना करें, क्योंकि अभी उनको सरकार का इतना बहुमत मिला है, वो अच्छा नहीं लगेगा कि एक इलेक्टेड सरकार को। कर्नाटक की सिचुएशन दूसरी है, वहाँ तो जनादेश नहीं था, वहाँ तो दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टियों ने मिलकर बनाया और वहाँ साझा सरकार है, लेकिन यहाँ तो एक पार्टी की है, तो उसमें ये है मतलब ऐसा है कि बस अब समय का ही वो है। भाजपा को यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्साह है कि बस अब जाने वाली है।
वही राजनीतिक समीक्षक दिनेश गुप्ता अभी किसी भी तरह कमलनाथ सरकार के लिए खतरे की घंटी नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के जो विधायक समर्थन दे रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, वह सिर्फ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। जहां तक भाजपा के नेताओं की बयानबाजी है, वह केवल अस्थिरता पैदा करने की कोशिश है ताकि प्रशासन में अस्थिरता बनी रहे।
विरोधाभासी बयान हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, वो एक लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं प्रोटेस्ट होना चाहिए, फिर एक बयान आ जाता है इसकी जरूरत नहीं है, अपने आप गिर जाएगी। सीबीआई का भी केस है कमलनाथ के करीबियों को लेकर, तो उस केस में क्या स्थितियां निर्मित होती है, तो ऐसा लगता है कि जो सीबीआई के साथ कांग्रेस पार्टी में जो दबाव बनेगा, तो उसका मौका भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती है, इंतजार कर रही है कि ऐसा स्थितियां निर्मित हो कांग्रेस पार्टी में ही फूट पड़े।
वहीं प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा के अंदर भी एक तबका ऐसा है जो शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहता है। यह बात कमलनाथ सरकार के पक्ष में जाती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस का मनोबल इस समय टूटा हुआ है। पार्टी के सभी बड़े नेता हार गए हैं और एक ही लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भाजपा के लिए बहुमत तक पहुंचना आसान नहीं है। कांग्रेस के पास 121 का समर्थन है, जबकि भाजपा को 109 से 116 तक पहुंचना है। इन सब बातों से प्रतीत हो रहा है कि भाजपा को इस वक्त कुछ करने की जल्दबाजी नहीं है, अभी कुछ वक्त इंतजार करना चाहेगी। शुरहनियाजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जहरीली शराब पीने से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि मरने वालों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। मरने वालों में 4 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। सरकार ने घटना की जांच के आदेश देते हुए 4 अधिकारियों समेत 12 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। पूरी जानकारी के साथ समीर आत्मज मिश्र।
बाराबंकी के रामनगर इलाके के रानीगंज गांव में जहरीली शराब ने ऐसा कहर ढाया कि देखते ही देखते कई लोग मौत के मुंह में समा गए। कई लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, जबकि कुछ की हालत बेहद गंभीर है। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी ने बीबीसी को बताया कि 9 लोगों की मौत बाराबंकी में हुई है, जबकि 1 की मौत लखनऊ में इलाज के दौरान हुई है।
8 लोग वहां पर डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, और 3 लोग यहां पर आए हैं, जिसमें 2 लोग भर्ती हैं, 1 लोग एक्सपायर हो चुके हैं।
हालांकि अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। गंभीर रूप से घायलों को बाराबंकी के जिला अस्पताल के अलावा लखनऊ के कुछ अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में दुकानदार समेत 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है, जबकि सरकार ने 4 अफसरों समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। राज्य के आबकारी मंत्री जयप्रताप सिंह ने मीडिया को बताया,
उनके दुकान से जो शराब खरीदा गया था वो फर्जी माल था, ये दुखद घटना है और इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हम लोग अपने विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी जो वहाँ के होते हैं इंस्पेक्टर और 3 हेड कांस्टेबल और 5 सिपाही को निलंबित अभी तत्काल प्रभाव से किया है, बाकी जैसे रिपोर्टें आएंगी वैसे देखा जाएगा।
घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी के डीएम और एसपी को तुरंत मौके पर पहुंचने और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए। इसके अलावा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश देते हुए योगी ने प्रमुख सचिव आबकारी को भी तुरंत जाँच के आदेश दिए। लखनऊ परिक्षेत्र के एडीजी राजीव कृष्ण के मुताबिक जिस दुकान से शराब खरीदी गई थी उसे सील कर दिया गया है।
उसके पीछे गहराई से जांच की जा रही है, जो दुकान है उसको सील कर दिया गया है।
जो बॉटल्स वगैरह हैं वो सीज कर ली गई हैं। इस तरह जो सेल्समैन है वो अरेस्ट हो गया है, जो अनुज्ञापी है उसके लिए पुलिस टीम में रवाना हुए हैं, वो बहुत जल्दी ही आज रात उसको अरेस्ट कर लेंगे।
वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि यहां लंबे समय से नकली शराब बनाने की एक अवैध फैक्ट्री है और नकली शराब धड़ल्ले से बेची जाती है। सोमवार शाम भी कुछ लोगों ने वहीं से शराब ली थी। परिजनों का कहना था,
पता का ठेके पे यहाँ दारू पी के आए हैं, बदवारा ने बोले न खाना खाए, तुरंत खत्म हो गए हैं अस्पताल में।
शराब के अवैध कारोबार को खुद आबकारी मंत्री भी स्वीकार करते हैं।
जहरीली शराब तो दूसरा प्रकरण है, ये अनुज्ञापी के यहाँ जो इन लोग अक्सर मिक्सिंग करते हैं और फर्जी माल लाते हैं, उस पर वो लेबल बदलते हैं। इस पर हम लोग ने लगातार प्रयास भी किया और लगातार मार भी किया है, काफी लोग को हम लोग ने पकड़ के जेल में भी डाला है। इसमें ये हमारे जो सिस्टम के अंदर जो हमारा इंस्पेक्टर हमारे सिपाही को लगातार राउंड लेके हर एक दुकान को चेक करना चाहिए, वो कहीं चेकिंग में कहीं जरूर कहीं ना कहीं कमी आ गई है। यदि हमारे जो भी कर्मचारी है लगातार चेकिंग करे एक एक दुकान का, उनका स्टॉक टेकिंग करे, उनके बॉटल्स का चेक करे, उनकी गुणवत्ता चेक करे, तो अपने आप में पकड़ में आ जाएगा।
पिछले साल जनवरी में भी इस इलाके में जहरीली शराब के सेवन से 11 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस साल फरवरी में सहारनपुर, मेरठ और कुशीनगर में जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में आज अल सुबह हुए IED विस्फोट में CRPF और पुलिस के 26 जवान घायल हो गए। इनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस इसे नक्सलियों की कार्रवाई बता रही है। रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
सरायकेला खरसावां जिले के कुजई इलाके में आज सुबह करीब 4:45 हुए IED विस्फोट में CRPF और झारखंड जगुआर के 26 जवान घायल हो गए। इन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। इनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका यहां के मेडिका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ऑपरेशन कराया गया है। अस्पताल के प्रवक्ता आनंद श्रीवास्तव ने BBC को बताया कि इनमें से मामूली रूप से घायल 11 जवानों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
कुल 26 जवान आए थे, जिसमें से 2 जवान जो है झारखंड जगुआर के थे और 24 जवान CRPF के थे, और जिसमें से 3-4 की स्थिति थोड़ा गंभीर है। हाँ, उनकी सर्जरी हुई है, उनका और उपचार चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका।
झारखंड पुलिस के प्रमुख DK पांडे ने इस विस्फोट के लिए नक्सलियों को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने चुनाव के दौरान कई जगहों पर बारूदी सुरंगें बिछाई थी, यह विस्फोट उसी का नतीजा है। DGP DK पांडे ने कहा,
चुनाव के समय में नक्सलियों द्वारा चुनाव को बाधित करने के लिए भारी मात्रा में ID लगाया गया है। बहुत सारी ID अभी भी जंगलों में लगी हुई है। कोबरा, झारखंड जगुआर और झारखंड पुलिस का एक संयुक्त अभियान वहाँ चल रहा है। उसी अभियान के तहत 3 दिन से जो अभियान प्रारंभ हुआ है, उसमें आज कोबरा और जगुआर की टीमें उस एरिया में गई थी और वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में एंटी पर्सनल माइन नक्सलियों के द्वारा ट्रिगर किया गया।
सरायकेला खरसावां के उसी इलाके में एक सप्ताह पहले भी ID विस्फोट हुआ था, उसमें 3 जवान घायल हुए थे। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता और IG ऑपरेशन आशीष बत्रा ने बताया कि तब जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक नक्सली को भी मार गिराया था। इस विस्फोट को उसी कड़ी में देखा जाना चाहिए।
ये जो घटना हुई है, इससे करीब एक सप्ताह पहले वहां पर ही नक्सलियों के द्वारा एक और ID ब्लास्ट किया गया था, जिसमें SAP के जवानों के साथ नक्सलियों का मुकाबला हुआ था। उसमें हमारे SAP के लड़कों ने, जो हमें बाद में जानकारी मिली, 2-3 नक्सलियों को गोली लगी थी और एक नक्सली उसमें मारा भी गया, जिसकी डेड बॉडी वो ले गए थे साथ में। और उसी के फॉलो अप में फर्दर ये वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और अभी भी अभियान लगातार जारी है और हम लोग नक्सलियों के विरुद्ध पूरी घेराबंदी करके उसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
इस बीच झारखंड पुलिस और CRPF के बड़े अधिकारियों ने अस्पताल जाकर घायल जवानों का हाल जाना और उनके स्वस्थ होने की कामना की। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने विस्फोट वाली जगह रायसिंदरी पहाड़ पर कई घंटे तक कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया। रवि प्रकाश, BBC रांची।
इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच विश्व कप के लिए अभ्यास मैच खेला जा रहा है। भारत ने 50 ओवरों में खेलते हुए 359 रन बनाए हैं। लोकेश राहुल और महेंद्र सिंह धोनी ने शतक लगाकर फॉर्म में आने का संकेत किया है। तो इस तरह से बांग्लादेश को जीत के लिए 50 ओवरों में 360 रन बनाने हैं। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 और CPIM के 1 विधायक BJP में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही 60 पार्षदों ने भी BJP की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वैन डर बेलिन ने देश में अंतरिम सरकार की नियुक्ति की है। सोमवार को ऑस्ट्रियाई चांसलर सेबेस्टियन कुर्ट्ज अविश्वास प्रस्ताव में हार गए थे, जिसके चलते मौजूदा सरकार गिर गई। ह्यूमन राइट्स वॉच समूह ने मिस्र की सेना पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने सिनाई प्रायद्वीप में रहने वाले आम नागरिकों को प्रताड़ित किया है। इस इलाके में इस्लामिक स्टेट समूह का वर्चस्व रह चुका है। सूडान में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने आज से 2 दिन की हड़ताल शुरू की है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी राजेश चौहान के पास। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।